ऐन्द्रिय बोध और बिहारी। समग्र हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर किसी भी ग्रंथ को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी बिहारी सतसई को प्राप्त हुई। खुले श्रृंगारिकता के प्रति बहुत कुछ अरुच हो जाने के बाद भी उसकी ख्याति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। क्या सतसई की चमत्कारिता को उसकी ख्याति का कारण माना जा सकता है? पर चमत्कार का मुलम्मा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में उसकी प्रसिद्धि के कारणों को सतसईगत काव्योचित मूल्यों में ही खोजना होगा। हिंदी सतसईयों की परंपरा में बिहारी सतसई का शीर्ष स्थानीय होना इस तथ्य का प्रमाण है कि उसमें अन्य सतसईयों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिक है। उसकी टीकाओं की परंपरा भी कम लंबी नहीं है। ये टीकाएँ इस बात की द्योतक हैं कि पठन पाठन के क्षेत्र में सतसई का विशेष प्रसार था। यह सब सतसई की आंतरिक विशेषताओं का कारण हुआ। सतसई का कथ्य तथा शैली दोनों ही अपने युग सामंती युग की विशिष्टताओं से समन्वित होने के कारण ईमानदारी की दृष्टि से अन्यतम हैं। सामंती ऐन्द्रिय बोध के अनुरूप जिस भाषा शैली का प्रयोग बिहारी ने किया वह एक ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। बाद की सतसईयां बिहारी की अनुकृत पर लिखी जाने के कारण प्रायः ताजगी से शून्य हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परवर्ती सतसईयां कहीं पर भी बिहारी से आगे नहीं बढ़ पाती, किंतु सतसईयों पर समग्रतः विचार करने पर बिहारी सतसई बेजोड़ सिद्ध होती है। बिहारी सतसई के बाद किसी अन्य श्रेष्ठ सतसई का नामोल्लेख होगा तो मतिराम सतसई का। बिहारी और मतिराम लगभग समसामयिक थे। एक पीढ़ी के कवि होने के नाते उनका ऐन्द्रिय बोध सेंसिबिलिटी भी मिलता जुलता था। यह आवश्यक नहीं है कि एक समय के दो कवियों के ऐन्द्रिय बोध सेंसिबिलिटी में समानता हो ही। कभी कभी ऐन्द्रिय बोध की विभिन्नता के कारण एक कवि समसामयिक प्रतीत होता है तो दूसरा कई शताब्दी पहले का। एक युग के दो कवियों में यदि वे युगीन चेतना के प्रति जागरूक हों तो लगभग एक प्रकार का ऐन्द्रिय बोध होता है और उनकी प्रयुक्त शब्दावली आइटम्स में भी एक तरह की समानांतरता आ जाती है। यह सब होते हुए भी मतिराम में न वह कसाव है और न वह व्यंजक शब्द योजना जो बिहारी सतसई में पाई जाती है। विक्रम सहाय और राम सहाय की सतसईयों तथा बिहारी की सतसई के रचना काल में लगभग 200 वर्षों का अंतर है। एक पीढ़ी का ऐन्द्रिय बोध दूसरी पीढ़ी की इच्छा के प्रतिकूल भी बदल जाता है। जो लोग इस परिवर्तन को परिलक्षित कर लेते हैं वे अपनी नवीन अनुभूतियों को नई शब्दावली देना चाहते हैं। इस चेतना के अभाव में लकीर पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। उक्त दोनों सतसईयों में बिहारी को अत्यधिक अनुकृति मिलती है। यह अनुकरण शब्दावली के प्रयोग तक ही सीमित है। बिहारी सतसई के अंतरंग का अनुकरण संभव भी कैसे होता? अच्छी विशेषताओं का अनुकरण प्रायः नहीं हो पाता। राम सहाय की सतसई के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन द्रष्टव्य है। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग्वैदध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हाँ, का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 8वां संस्करण पृष्ठ 388। आधुनिक सतसईयों में वियोगी हर की वीर सतसई का विशेष सम्मान हुआ। इसकी प्रतिष्ठा के दो कारण हैं। एक तो यह श्रृंगार सतसई न होकर वीर सतसई है जिससे पिष्ट पेषण नहीं हो पाया, दूसरे कथ्य के अनुकूल शब्द योजना भी परिवर्तित हो गई है। बिहारी की परंपरा में पढ़ने वाली दुलारे दोहावली, जिसमें बिहारी की बारीकी, वैदग्ध्य, चमत्कारिता आदि के दर्शन होते हैं, कुछ दिनों तक रीतिकालीन मनोवृत्ति वाले सहृदयों का मनोरंजन कर लुप्त प्राय हो गई। बिहारी सच्चाई एक विशेष युग में ही लिखी जा सकती थी, उसके बाद उसकी अनुकृति ही संभव है। इस काल के दूसरे विशिष्ट कवि देव, जिन्हें बिहारी की तुलना में बार बार ले आया जाता है, मुख्यतः कवित्व सवैये के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति करते रहे। उन्होंने अलग ढंग से अनुभव किया और उसकी अभिव्यक्ति के लिए अलग माध्यम ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप उनकी शब्दावली कोष्ठ में इडियम भी कुछ भिन्न हो गई। कुछ युगीन विशेषताओं को छोड़कर दोनों कवियों की परंपराएं अलग अलग थीं। बिहारी मुक्तक काव्य परंपरा में पढ़ते हैं तो देव रीतिबद्ध परंपरा में। इसके अतिरिक्त दोनों की जीवन दृष्टि में एक प्रकार की समानता होते हुए भी ऐन्द्रिय बोध में विभिन्नता थी। एक का ऐन्द्रिय बोध वस्तुनिष्ठ था तो दूसरे का आत्मनिष्ठ। इस विभिन्नता के कारण बिहारी की अभिव्यक्ति में एक विशेष प्रकार की सजगता और सतर्कता आ गई तो देव की अभिव्यक्ति में भावाविष्ट आवेगमयता। अतः दोनों के दृष्टिकोण की तुलना तो की जा सकती है, पर दोनों के काव्य की तुलनात्मक दृष्टि से देखना तुलनात्मक आलोचना के साथ अन्याय करना है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीत युग के किसी भी कवि में नहीं है। परंतु सौंदर्य में पूर्णतः रसमग्न होने की क्षमता देव में उनसे कहीं अधिक है। समग्र रूप से विचार करते हुए देव के काव्य की आत्मा बिहारी के काव्य की आत्मा से अधिक समृद्ध है। काव्य शिल्प की दृष्टि से दोनों पक्ष समान रूप से प्रबल हैं, यद्यपि यहाँ भी टेक्निक दोनों की सर्वथा भिन्न है। देव की अपेक्षा बिहारी की कला अधिक सचेष्ट है, उन्होंने कला का माध्यम भी अपेक्षाकृत सूक्ष्म ही चुना है। स्वभावतः उनके शिल्प का मुख्य गुण है जड़ाव। इसके विपरीत देव के शिल्प में कोमल सामंजस्य अधिक है। बिहारी की भाषा देव की भाषा से अधिक प्रौढ़ है। उसकी लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक शक्ति अत्यंत विकसित तथा समास गुण अद्भुत है। उधर देव की भाषा में झंकृत संगीत और औज्ज्वल्य अधिक है। अतएव शिल्पी रूप में दोनों के सापेक्षिक महत्व का निर्णय निर्णायक की रुचि पर ही निर्भर है। डॉक्टर नगेंद्र रीत काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पृष्ठ संख्या 298। किंतु जहाँ तक काव्य के उत्कर्षापकर्ष का सवाल है, यह भी निर्णायक की रुचि पर भी निर्भर है। ध्वनिवादी को बिहारी का काव्य अधिक काव्य गुण समन्वित मालूम पड़ेगा तो रसवादी को देव का। इसीलिए प्रारंभ में ही इसका संकेत किया जा चुका है कि ऐन्द्रिय बोध की असमानता के कारण दोनों की तुलना औचित्यपूर्ण नहीं मानी जा सकती। मतिराम बिहारी और देव के मध्यवर्ती हैं। उनमें आंशिक रूप से भावात्मक तरलता और सतर्कता दोनों है। उन्होंने आत्माभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार के माध्यमों, दोहा तथा कवित्व सवैया को ग्रहण किया। पद्माकर की काव्यानुभूति शक्तिमती अवश्य है, पर देव की तरह भाषा की चुस्ती का उनमें भी अभाव है। इस काल में क्लासिकल परिपक्वता बिहारी में ही प्राप्त होती है। ऐन्द्रिय बोध कोष्ठ में सेंसिबिलिटी की विभिन्नता के कारण अभिव्यक्ति की पद्धति में जो अंतर आता है, उससे कवियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं उद्घाटित की जा सकती हैं। किंतु यदि बिहारी के ऐन्द्रिय बोध के अंतर का स्पष्टीकरण कर लिया जाए तो उनके मूल्यानुचिंतन में अधिक सहायता मिलेगी। किसी व्यक्ति को बाह्य जगत का बोध किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से होता है। इसी के आधार पर स्मृतियों और कल्पनाओं का निर्माण होता है। पर यह ख्याल रखना चाहिए कि मानवीय इंद्रियां कैमरे का लेंस नहीं है जो बाह्य आकृतियों को ज्यों का त्यों उतार लें। यह प्रभा कोष्ठ में परसेप्शन परक ज्ञान फोटोग्राफी के ज्ञान से भिन्न होता है। व्यक्ति की विचित्रताएं और वैयक्तिक विशेषताएं बाह्य बोध को बहुत कुछ नए रूप में ढाल देती हैं। इसीलिए प्रभात्मक बोध को मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक ज्ञान से अधिक माना है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के अंतर जीवन की परख होती है। इस ऐन्द्रिय बोध की जो प्रतिक्रिया होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संवेदनात्मक तथा आवेगात्मक। संवेदनात्मक प्रतिक्रिया का संबंध संयम, सुरुचि और संस्कृति से होता है तो आवेगात्मक प्रतिक्रिया का संबंध जैविक जगत से होता है। बिहारी के अतिरिक्त रीतिकाल के शेष प्रतिनिधि कवियों में आवेगमयता का प्राधान्य है। उन कवियों की तुलनात्मक विवेचना करते समय उनकी आवेगमयता के विभिन्न दर्जों की व्याख्या करनी पड़ेगी। बिहारी का वैशिष्ट्य उनके संवेदनात्मक काव्य चित्रों में निहित है जो व्यापक काव्य चेतना और मानसिक संगठन की अपेक्षा रखता है। आवेगात्मक काव्य जैवी मनोवृत्तियों से समृद्ध होने के कारण पाठकों के मन पर शीघ्रतापूर्वक गहरा प्रभाव डालकर उन्हें आंदोलित करने में पूर्णतः समर्थक होते हैं। संवेदनात्मक काव्य अपेक्षाकृत व्यापक जीवन भूमि की पीठिका रखते हैं, इसलिए उनकी अनुगूंज भी अधिक स्थिर और गहरी होती है। बिहारी के काव्य का वैशिष्ट्य उनकी संवेदनात्मक अनुगूंज में है, उनके ऐन्द्रिय बोध की विशेषता में है, उनकी शब्दावली कोष्ठ में इडियम्स के अनूठे प्रयोग में है। यहीं पर यह विचारणीय है कि यदि बिहारी और इस युग के अन्य प्रतिनिधि कवियों का ऐन्द्रिय बोध और शब्दावली उस युग के अनुरूप है और वे कवि कम प्रतिभा संपन्न भी नहीं हैं तो उन्हें प्रथम श्रेणी के महाप्राण कवियों में गिना जा सकता है? उत्तर होगा नहीं। एक ओर जाने अनजाने सभी लोग इस काल की कविताओं की श्रृंगार माधुरी पर मुग्ध दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी ओर उनकी दृष्टि संकोच बंधी वाग्धारा की शिकायत भी करते हैं। वास्तविकता यह है कि ये सभी कवि लक्षणों और उदाहरणों दोनों में विगत आदर्शों की रक्षा करते हुए दिख पड़ते हैं। उनकी कविता के सभी आदर्श सामंती आदर्श के मेल में होने के कारण उस घेरे के बाहर नहीं झांक पाती। यदि व्यापक सामंती आदर्शों को भी समग्रतः आकलित किया गया होता तो भी उन्हें व्यापक भावभूमि मिल जाती। समस्त युग की कविताओं का आलोड़न करने पर कहीं भी उस आवेग के दर्शन नहीं होते जो रुद्ध जीवनधारा को मार्ग दे सके। उनके द्वारा कहीं भी नवीन चिंतन और सृजनात्मक जीवन चेतना को बल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में यह युग अल्पप्राण कवियों का युग ही कहा जाएगा।